साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगणललिता श्रीविशाखान्वितांश्च हे कृष्णकरुणासिन्धो दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरि प्रिये वांछाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः नमः ओम विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामीन इति नामिने नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवास आदि गौर भक्त वृंद हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे
हरे कृष्णा। सभी भक्तों का स्वागत है हमारे चैतन्य चरितामृत के 39वें सत्र में। बीच में 3-4 दिन हमारी कथा नहीं हुई, लेकिन ऐसा लग रहा था कि मानो बहुत दिन से जो है वो चैतन्य चरितामृत पे हमने चर्चा नहीं की है। तो हमने हमारे पिछले सत्र में हमने अंत्यलीला इसका 15वां अध्याय इसके ऊपर चर्चा की थी कि किस प्रकार से जब महाप्रभु दर्शन के लिए जाते हैं जगन्नाथ जी के, तो वहां पर वो भगवान के दिव्य गुणों से आकर्षित हो जाते हैं और भगवान श्री कृष्ण के जो 5 गुण है विशेष शब्द स्पर्श रूप रस गंध और उनकी जो 5 इंद्रिया है वो इस प्रकार से आकर्षित हो जाती है गुणों की तरफ कि महाप्रभु अचेत होकर वहीं पे गिर जाते हैं। और फिर जब उन्हें घर पर लाया जाता है तब वो कुछ श्लोक सुनाते हैं जो श्रीमती राधा रानी द्वारा विशाखा को कहा गए थे। उस श्लोक का आस्वादन करते हुए अलग अलग अर्थ जो है वो उसका बताते हैं कि किस प्रकार से जो है वो 5 इंद्रियां जब मन के ऊपर, जो मन एक घोड़ा है उस घोड़े के ऊपर जब सारी इंद्रियां आरूढ़ हो जाती है और तब वो घोड़ा जो है वो 5 दिशाओं में अलग अलग भागता है और उसका जान चला जाता है, उसका प्राण चला जाता है। तो इस प्रकार से कृष्ण के प्रति जो है वो आकर्षित होते हैं महाप्रभु श्रीमती राधारानी के भाव में। और इस प्रकार से और एक बार जब वो समुद्र स्नान के लिए जा रहे होते हैं तब एक पुष्प उद्यान में प्रवेश कर जाते हैं और जब पुष्प उद्यान में प्रवेश कर जाते हैं तो जिस प्रकार से रासलीला के बीच में ही जब कृष्ण अंतर्धान हो गए थे श्रीमती राधारानी को लेके, तो सारी गोपियां जो कृष्ण को ढूंढ रही थी वृक्षों को पूछ रही थी, उसी भाव में महाप्रभु उन गोपियों के साथ सम्मिलित होकर के जो है वो मानो वृक्षों को पूछ रहे थे, लताओं को पूछ रहे थे, फलों को पूछ रहे थे। इस प्रकार से जो है वो पूछते पूछते श्रीमती ये जो गोपी के भाव में जिस प्रकार से गोपियां कृष्ण को ढूंढ रही थी उसी प्रकार से महाप्रभु उसी भाव में कृष्ण को ढूंढते हुए जा रहे थे। और फिर हमने देखा कि इस प्रकार से सारे भक्त वहां पर पहुंच जाते हैं, महाप्रभु को सचेत करते हैं कृष्ण का कीर्तन करके और उसके पश्चात जो है वो समुद्र स्नान करके पुनः वापस लौटते हैं। तो इस प्रकार से महाप्रभु जो है वो जगन्नाथपुरी में निवास करते हैं और जो खास करके आखिर के जो 12 साल है उसमें महाप्रभु का जो शारीरिक कार्य था वो केवल बाह्य रूप से हुआ करता था। जिस प्रकार से कविराज गोस्वामी उदाहरण देते हैं, कुम्हार का चाक जो होता है एक बार उसे आप घुमा देंगे तो वो घूमता रहता है, उसी प्रकार से महाप्रभु के सारे शारीरिक कार्य जो है वो हुआ करते थे। और महाप्रभु जो है वह केवल स्वरूप दामोदर और राय रामानंद इनको लेके ही जो है वो अपना उन्माद जो है वो प्रकट किया करते थे। तो इस प्रकार से आज हम लोग 16वां अध्याय प्रारंभ करने जा रहे हैं, जिसका शीर्षक है चैतन्य महाप्रभु के द्वारा कृष्ण के अधरों का अमृत का पान करना। तो इसके पहले श्लोक में कविराज गोस्वामी चैतन्य महाप्रभु को प्रणाम करते हुए कहते हैं, वंदे श्री कृष्ण चैतन्यम कृष्ण भावामृतम ही यह आस्वाद्य आस्वादयन भक्तान प्रेम दीक्षाम अशिक्षयत। कहते हैं कि वंदे श्री कृष्ण चैतन्यम, उन श्री चैतन्य महाप्रभु को मैं प्रणाम करता हूं। क्या किया है जिन्होंने? कृष्ण भावामृतम ही यह, जो कृष्ण भाव का जो अमृत है और उसका जो सागर है, आस्वाद्य आस्वादयन, स्वयं आस्वाद ले रहे हैं और दूसरों को आस्वादन करा रहे हैं। किसका? प्रेम, जो कृष्ण का प्रेम है उसका स्वयं आस्वादन कर रहे हैं और दूसरों को भी आस्वादित कर रहे हैं। प्रेम दीक्षाम अशिक्षयत, सारे लोगों को उन्होंने दीक्षा दी है इस कृष्ण के प्रेम अमृत में और उसकी जो है वो शिक्षा महाप्रभु प्रदान कर रहे हैं। ई मत महाप्रभु रहे न नीला चले भक्तगण संगे सदा प्रेम विवले। इस प्रकार से महाप्रभु हमेशा प्रेम में विवल होते हुए अपने भक्तों के संग में जो है वो नीलाचल में वास किया करते थे। हर साल की तरह इस साल भी बंगाल से कई भक्त महाप्रभु को मिलने के लिए आए। कविराज गोस्वामी ने लगभग हर एक अध्याय में इसका वर्णन किया हुआ है कि किस प्रकार से बंगाल से भक्त आया करते थे और अलग 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 वृत्तांतों को वो सुनाते थे। एक बार उन्होंने बताया था कि किस प्रकार से शिवानंद सेन के कुत्ते का उद्धार किया था, इस प्रकार से बंगाल से कई भक्त आया करते थे, कभी शिवानंद सेन के लड़कों का उद्धार उन्होंने किससे किया, ऐसे अलग अलग वृत्तांत सुनाया करते थे। तो अभी कविराज गोस्वामी बता रहे हैं कि इस साल भी बंगाल से सारे भक्त रथ यात्रा आदि महोत्सव देखने के लिए महाप्रभु से मिलने के लिए पुरी में आते हैं। इस बार एक भक्त आता है बंगाल के भक्तों के साथ जिसका नाम था कालिदास। ये जो कालिदास थे वो केवल कृष्ण 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 इस प्रकार से सदैव कृष्ण के नाम का जप और कीर्तन किया करते थे, बाकी उनसे मुख से कुछ भी अन्य नहीं निकलता था। बड़े महाभागवत ये भक्त थे। महाभागवत ते हो सरल उदार कृष्ण नाम संकेते चालाय व्यवहार। बड़े महाभागवत थे, सरल स्वभाव के व्यक्ति थे और बहुत ही उदार थे। कृष्ण नाम संकेते चालाय व्यवहार, जो भी व्यवहारिक कार्य किया करते थे उसमें भी वो कृष्ण का नाम ही लिया करते थे। कृष्ण ऐसा करो, कृष्ण ऐसा ऐसा होना चाहिए। तो इस प्रकार से जो फांसे भी फेंकते थे कुछ खेलते वक्त तो भी वो कृष्ण करके जो है वो पुकारा करते थे। तो इस प्रकार से वो जो थे हमारे रघुनाथ दास गोस्वामी, उनके वो चाचा लगते थे। मतलब सगे चाचा तो नहीं थे, क्योंकि रघुनाथ दास गोस्वामी गोवर्धन मुजुमदार इनके लड़के थे, तो उनके जो सगे चाचा थे वो हिरण्य मुजुमदार थे। तो ये कालिदास जो थे वो दूर संबंधी से के कालिदास इस साल सारे बंगाल के भक्तों के साथ जो है वो महाप्रभु से मिलने के लिए आते हैं। तो ये जो कालिदास जो थे ये रघुनाथ दास गोस्वामी के दूर के कोई संबंधी में चाचा लगते थे और बचपन से ही उन्हें एक आदत थी, वो हमेशा वैष्णव का झूठा महाप्रसाद जिसे हम कहते हैं वो खाया करते थे और उनका महाप्रसाद के ऊपर बिल्कुल विश्वास गाढ़ा था। तो इसलिए वो वैष्णव का झूठा ही वो ग्रहण किया करते थे और अभी वो बूढ़े हो गए थे लेकिन फिर भी उनकी वो आदत नहीं गई थी, अभी भी वो झूठा ही खाते थे। बंगाल के लगभग सभी वैष्णवों का झूठा प्रसाद उन्होंने ग्रहण किया था और वो क्या किया करते थे, कुछ प्रसाद भेंट के रूप में लेके जाया करते थे, वैष्णव को देते थे और झूठन मांगते थे कि आपका झूठा दे दो। यदि वो कोई नहीं देता था तो छिपके से किसी न किसी प्रकार से वो ले ही लेते थे। तो एक वृत्तांत कविराज गोस्वामी सुनाते हैं कि कैसे उन्होंने बंगाल में हर एक भक्त का जो है वो झूठन प्राप्त किया था। फिर वो ब्राह्मण है, निम्न जाति का है, बड़ा है, नया आया हुआ भक्त है, सभी भक्तों का वो झूठन जो है वो ग्रहण किया करते थे। तो एक बार एक भूईमाली जाति, मतलब कोई निम्न जाति के एक भक्त थे जिनका नाम था झड़ू ठाकुर। तो इन झड़ू ठाकुर के पास जो है वो कालिदास आम भेंट लेके जाते हैं। जैसे अभी आम का सीजन चल रहा है तो आम वो भेंट लेके जाते हैं, और झड़ू ठाकुर उनका बहुत अच्छे से स्वागत करते हैं कि आप इतने महान भक्त हैं, आइए मैं आपकी कैसी सेवा करूं। और कहते हैं कि किसी ब्राह्मण के घर से मैं प्रसाद मंगाऊं आपके लिए, मैं तो निम्न जाति का हूं इसलिए नहीं आपकी सेवा कर सकता। तो कालिदास कहते हैं कि नहीं नहीं, आपको ऐसा कुछ करने की आवश्यकता नहीं है, मैं तो केवल आपके दर्शन के लिए यहाँ पे आया था, आपका दर्शन मैंने पा लिया है, मेरा अभी जीवन सफल हो गया है, मैं अपने आप को कृतार्थ मानता हूं, आपकी चरणों की कोई धूल दे दीजिए बहुत हो जाएगी। तो झड़ू ठाकुर कहते हैं कि देखो मैं तो निम्न जाति का हूं, आपको ऐसे बोलना बिल्कुल शोभा नहीं देता है। फिर कालिदास कई सारे शास्त्रों के श्लोक सुनाते हैं, जैसे नमे अभक्तश चतुर्वेदी मद्भक्त स्वपच प्रियः, चारों वेदों का भी कोई जानकार व्यक्ति है लेकिन मेरा भक्त नहीं है तो वो मुझे प्रिय नहीं है। और कोई व्यक्ति है जो स्वपच, जो चांडाल भी क्यों नहीं हो फिर भी यदि मेरा भक्त है तो वो मुझे जो है वो अतीव प्रिय है। और प्रहलाद महाराज के प्रार्थनाओं को भी सुनाते हैं, विप्राद्विषट गुणयुताद अरविंद नाभ पादारविंद विमुखाद स्वपचम वरिष्ठम मन्ये तदर्पित मनोवचने हितार्थ प्राणम पुनाति सकुलम नतु भूरिमानः। विप्राद्विषट गुणयुताद अरविंद नाभ पादारविंद विमुखाद स्वपचम वरिष्ठम, कि यदि कोई व्यक्ति ब्राह्मण कुल में जन्म लिया हो और कई सारे गुण उनके अंदर है लेकिन फिर भी यदि भगवान पादारविंद विमुखात भगवान से विमुख है तो वो श्रेष्ठ नहीं है। और यदि कोई चांडाल भी है स्वपच लेकिन वो भगवान का भक्त है तो वो उसे जो है वो श्रेष्ठ मानना चाहिए, क्योंकि वो जो ब्राह्मण है वो तो कुल का तो छोड़ दो अपने स्वयं का भी उद्धार नहीं कर सकता, यदि भगवान से विमुख है लेकिन ये चांडाल जो है वो सारे परिवार का उद्धार जो है वो अपने कर सकता है। इस प्रकार से कई सारे श्लोक सुनाते हैं। तो झड़ू ठाकुर कहते हैं कि देखो आप जो बोल रहे हो वो बिल्कुल सही है, वो तो शास्त्र के वचन है लेकिन मैं एक भक्त नहीं हूं। तो इस प्रकार से उनकी चर्चा होती है। तो फिर वहां से कालिदास निकल पड़ते हैं और झड़ू ठाकुर उन्हें विदा करने के लिए थोड़े दूर तक अंतर तक वो जाते हैं। फिर कालिदास वहां से निकल जाते हैं आगे और झड़ू ठाकुर पुनः पीछे लौट के अपने घर आते हैं। तो जैसे ही झड़ू ठाकुर पीछे लौट के आते हैं कालिदास पुनः पीछे मुड़ के आते हैं और जहां जहां पे उनके चरण गिरे थे झड़ू ठाकुर के वहां की धूली लेके अपने माथे पे लगाते हैं और पुनः जाके जो है वो पीछे एक वृक्ष के पीछे छिप जाते हैं। तो झड़ू ठाकुर अभी घर में आए तो जो आम उन्हें भेंट में मिले थे जो कालिदास ने ही दिए थे वो भगवान को भोग लगाते हैं और उनकी पत्नी और वो बैठ के उन आमों को चूस चूस कर खाते हैं। तो आम को जैसे उन्होंने खा लिया तो एक केले के पत्ते के ऊपर जो है वो आम के अंदर की गुठलियां और उसके छिलके जो है वो उसमें वो एकत्रित करते हैं और सारे आम चूस के खाने के पश्चात वो केले के पत्ते को उठा के उनकी पत्नी झड़ू ठाकुर की पत्नी जो वो कूड़ादान में फेंक देती है। और वो जब घर के अंदर चली जाती है तब जो है वो कालिदास वहां से छिपके से आते हैं और उस केले के छिलके में से सारी गुठलियों को निकाल के जो है वो चूस चूस के उनका महाप्रसाद का प्रेमावेश में होकर आस्वादन करते हैं। तो इस प्रकार से कविराज गोस्वामी सुना रहे हैं कि वही कालिदास जिसने सारे बंगाल के भक्तों का महाप्रसाद लिया था वही अभी जगन्नाथपुरी में महाप्रभु से मिलने के लिए जो है वो आए हुए है। तो महाप्रभु का दैनंदिन नित्यक्रम था कि वो जगन्नाथ जी के दर्शन के लिए जाया करते थे और गोविंद भी उनके साथ दर्शन के लिए जाते थे। तो सिंहद्वार के उत्तर में 22 सीढ़ियां चढ़कर जगन्नाथ जी के मंदिर में प्रवेश किया जाता है, आपको भी पता होगा वो 22 सीढ़ियां अभी भी है। और उसके नीचे सबसे नीचे एक गड्ढा है जिसमें जो है वो जल होता है पैर धोने के लिए। तो महाप्रभु उस गड्ढे से होकर अपने चरण का प्रक्षालन करके आगे जाते थे और महाप्रभु ने गोविंद को बता के रखा था कि मैं जो मेरा पाद प्रक्षालित जल है वो किसी को नहीं देना है। तो कुछ भक्त थे महाप्रभु के अंतरंग पार्षद जो छिप छिप कर जो महाप्रभु का पादोदक जो है वो ग्रहण किया करते थे। तो अभी कालिदास आया हुआ था, तो एक दिन की बात है कि महाप्रभु अपना पाद प्रक्षालन कर रहे थे और पाद प्रक्षालित जल जो आगे जा रहा था, जो कालिदास थे अपने हाथ फैलाकर वहां पर खड़े थे। एक दिन प्रभु तहां पाद प्रक्षालित कालिदास आसी तहां पातीले न हाते, अपने हाथ फैलाकर कालिदास बैठे हुए थे और पानी पी रहे थे महाप्रभु के सामने। महाप्रभु ने गोविंद को बता के रखा था कि किसी को मेरा पाद प्रक्षालित जल जो है वो नहीं देना है, लेकिन अभी ये कालिदास हाथ फैला के और पानी पी रहे, महाप्रभु पैर धो रहे, कालिदास महाप्रभु के सामने पानी पी रहे। एक अंजुली, दुई अंजुली, तीन अंजुली पीला तबे महाप्रभु तारे निषेध करीला। एक दो तीन करके जब तीन अंजुली भर के पानी पी लिया, चरणों का धोया हुआ जल, तब महाप्रभु ने जो है उन्हें कह दिया अभी बस हो गया, बहुत हो गया। महाप्रभु क्यों पीने दिया जल, बाकी किसी को नहीं पीने देते थे, क्योंकि महाप्रभु सर्वज्ञ थे और महाप्रभु जानते थे कि कालिदास के हृदय में भक्तों के महाप्रसाद के ऊपर बहुत विश्वास है। तो वो भक्तों का उच्चिष्ट झूठन प्रसाद खाने में प्रवीण थे और उसके ऊपर उनका विश्वास था, इसलिए महाप्रभु ने जो है वो उन्हें भी ये कृपा प्रदान की। तो इस प्रकार से महाप्रभु जो है वो 22 सीढ़ियां चढ़ने के पश्चात दक्षिण दिशा में ऊपर एक नरसिंह मंदिर है, उन्हें प्रणाम मंत्र बोलते थे और आगे जाते थे। नमस्ते नरसिंहाय प्रहलाद लाद दायिने हिरण्यकशिपोर्वक्षः शिलाटंक नखालये इतो नरसिंह परतो नरसिंह यतो यतो यामि ततो नरसिंह बहिर्नरसिंह हृदये नरसिंह नरसिंह मदीं शरणं प्रपद्ये। इस प्रकार से महाप्रभु प्रणाम करते हुए नरसिंह देव को आगे जाते थे। तो ये नरसिंह प्रणाम महाप्रभु ने नरसिंह देव को अर्पण किया हुआ है। नमस्ते नरसिंहाय, उन नरसिंह देव को मैं प्रणाम करता हूं। नमस्ते नरसिंह प्रहलाद अल्लाद दायिने, जो प्रहलाद जी को भी जो है वो आनंद प्रदान करते हैं। हिरण्यकशिपुर वक्षः, हिरण्यकशिपु की छाती उनने जो है फाड़ दी है। किस प्रकार से? शिला टंक नखालये, जिस प्रकार से शिला अर्थ होता है पत्थर, एक बहुत बड़ा पत्थर है और उसे टंक यानी छन्नी, छन्नी से जो है वो थोड़ा जाए, इस प्रकार से जो है वो शिला को फोड़ा जाता है, उसी प्रकार से नाखूनों से अपने उन्होंने हिरण्यकशिपु का वक्ष यानी छाती जो है वो फाड़ दी है। इतो नरसिंह परतो नरसिंह, यहां जहां जहां मैं देखता हूं मुझे नरसिंह देव ही दिखते हैं। यतो यतो यामी ततो नरसिंह, बहिर नरसिंह हृदय नरसिंह, नरसिंह भगवान मेरे बाहर भी है और अंदर भी है। नरसिंह मदिम शरणम प्रपद्ये, उन नरसिंह भगवान को मैं प्रणाम करता हूं। तो श्रील प्रभुपाद जी ने जो नरसिंह आरती हमें दी है वो यही से ली हुई है, जब चैतन्य महाप्रभु प्रणाम किया करते थे नरसिंह देव को। तो श्रील प्रभुपाद जी ने इसे जनरल आरती के रूप में सबके सामने प्रस्तुत किया है और उसके आगे तव कर कमलवरे जो है वो दशावतार स्तोत्र का एक पंक्ति उन्होंने लिया है, एक स्टांजा और एक परिच्छेद लेके जो है वो इसे ऐड कर दिया है, ऐसी हमारी नरसिंह आरती बनती है। तो नरसिंह आरती, नरसिंह प्रणाम करके चैतन्य महाप्रभु जगन्नाथ जी को जो है वो प्रणाम करने के लिए जाते थे। तो जगन्नाथ जी का महाप्रभु ने जो है वो दर्शन लिया और जगन्नाथ जी का दर्शन लेने के पश्चात महाप्रभु घर पधारते हैं। जब घर जा ही रहे अंदर तो देखते हैं दरवाजे के बाहर कालिदास जो है वो बैठा हुआ है। तो महाप्रभु अंदर जाते हैं, घर के अंदर भोजन पाते हैं और महाप्रभु समझ जाते हैं कि कालिदास क्यों बैठा है। तो महाप्रभु गोविंद को इशारा करते हैं और गोविंद इशारे से समझ जाते हैं और महाप्रभु का जो उच्चिष्ट महाप्रसाद है वो गोविंद जो है वो कालिदास को लाके देते हैं और कालिदास उन्हें पा लेता है। इस सुअवसर को पाकर कविराज गोस्वामी जो है वो भगवान के महाप्रसाद की और खास करके जो भक्तों का उच्चिष्ट प्रसाद है उसकी महिमा का गान करते हैं। वैष्णवेर शेष भक्षणेर एतेक महिमा कालिदास पाउयाइल प्रभुर कृपा सीमा। वैष्णवों का जो उच्चिष्ट है उसकी एक बहुत बड़ी महिमा है कि कालिदास को भी चैतन्य महाप्रभु की सर्वोत्कृष्ट उच्च सीमा तक जो है वो कृपा प्राप्त हो गई, क्योंकि वो भक्तों का उच्चिष्ट प्रसाद ग्रहण किया करता था। इसलिए कविराज गोस्वामी विनती करते हैं सारे भक्तों को, सारे श्रोताओं को, ताते वैष्णवेर झूठा खाओ छाड़ी तृष्णा लाज, यहां है ते पाईबा निज वांछित सब काज, सारी लज्जा सब कुछ छोड़ के वैष्णव का झूठा जो है वो आप खाइए, और इससे क्या होगा, यहां है ते पाईबा निज वांछित काज, आपकी सारी इच्छाओं की पूर्ति हो जाएगी। इसलिए वैष्णव का उच्छिष्ट खाना चाहिए। कृष्णेर उच्छिष्ट है महाप्रसाद नाम, भक्त शेष हईले महा महाप्रसाद आख्यान, कृष्ण का उच्चिष्ट है उसे कहा जाता है महाप्रसाद, लेकिन जो भक्तों का उच्चिष्ट होता है उसे कहते हैं महा महाप्रसाद, उसका ये नाम है। इसलिए कविराज गोस्वामी कहते हैं कि ये तीन चीजें हैं इस संसार में सबसे अधिक शक्तिशाली है, भक्त पद धूली अर भक्त पद जल, भक्त भुक्त अवशेष तीन महाबल। भक्त पद धूली भक्तों के चरणों की रज, भक्त पद जल भक्तों का जो है वो पाद प्रक्षालन किया हुआ जल, और भक्त भुक्त अवशेष उन्होंने महाप्रसाद का जो उच्चिष्ट है, ये तीन जो है वो महाबल है, बहुत शक्तिशाली है, इसलिए इनकी सेवा करना चाहिए। ए तीन सेवा होय ते कृष्ण प्रेमा होय पुनः पुनः सर्वशास्त्रे फुकारिया कोय, इन तीनों की सेवा यदि कोई व्यक्ति करता है तो कृष्ण प्रेम निश्चित रूप से उसे प्राप्त हो जाता है। कौन कहता है, सारे शास्त्र बार 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 यही जो है वो बोलते हैं। तीन है ते कृष्ण, इन तीनों के साथ लेता है तो है प्रेमेर उल्लास, उसे कृष्ण प्रेम निश्चित रूप से प्राप्त हो सकता है, और उसके साक्षी जो है वो है कालिदास। तो इस प्रकार से चैतन्य महाप्रभु नीलाचल में थे और कालिदास के ऊपर कैसे उन्होंने कृपा की, इसका वृत्तांत हमने सुनाया हुआ है। एक बार की बात है, शिवानंद सेन जब महाप्रभु को मिलने के लिए आते हैं अपनी पत्नी के साथ, तो उनके साथ में जो उनका तीसरा लड़का पुरीदास, जिसे परमानंद दास ये नाम से भी हम लोग बोलते थे, तो पुरीदास आए हुए हैं, और महाप्रभु जैसे हम भी जब छोटे बच्चे को देखते हैं तो कहते हैं कि बोलो बोलो कृष्ण बोलो आपका नाम बताओ, तो महाप्रभु भी जब पुरीदास को मिले तो महाप्रभु पुरीदास को कहने लगे, कृष्ण कह बलि प्रभु बले न बार बार, तबु कृष्ण नाम बालक ना करे उच्चार। महाप्रभु बोल रहे थे कृष्ण का बोलो कृष्ण बोलो, लेकिन ये बालक कृष्ण का नाम ले ही नहीं रहा था। शिवानंद सेन भी उन्हें प्रयास कर रहे थे, अरे बोलो बोलो महाप्रभु बोल रहे हैं, लेकिन फिर भी जो है बालक कृष्ण का नाम बोल ही नहीं रहा था। महाप्रभु कह रहे, अरे मैं पूरे जगत से कृष्ण का नाम बुलवा रहा हूं, लेकिन ये बालक, अचेत वस्तुओं से भी मैंने कृष्ण का नाम बुलाया है, लेकिन ये बालक जो है वो कृष्ण का नाम नहीं ले रहा है। स्वरूप दामोदर कहते हैं कि महाप्रभु आपने तो इसे कृष्ण नाम में दीक्षा दी है, लेकिन मेरे मेरे मतानुसार ये केवल मन में कृष्ण का नाम ले रहा है, जगत के सामने जो है वो इसका प्रकाश नहीं कर रहा है। तो इस प्रकार से अन्य दिन वही बालक को जब महाप्रभु के सामने लाया गया, तब महाप्रभु कहते हैं पुरीदास कुछ सुनाओ, और पुरीदास सुनाने लगते हैं, श्रीवसो कवलयम अक्षणोर अंजनम उरसो महेंद्र मणिदाम वृंदावन रमणी नाम मंडनम अखिलम हरिर जयती। क्या ये पुरीदास अभी छोटा बच्चा है, क्या कहते हैं, व्रज गोपांगनाओं के लिए श्रवसो कवलयम, जो उनके कानों के लिए कृष्ण जो है वो नील कमल के समान है, अक्षणोर अंजनम कृष्ण उनके आंखों के अंजन के समान है, उर्सो महेंद्र मणिधाम उनके वक्षस्थल पर जो है वो इंद्र नील मणियों के रत्नहार के समान जो है वो सुसज्जित है, अखिलम हरिर जयति उन हरि की जय हो जय हो। अभी ये बालक अभी तक कहीं पर कुछ सीखा नहीं है, सातवत्सर शिशु नाही अध्ययन ऐछे श्लोक करे लोकेर चमत्कार मन। ये 7 वर्ष का शिशु अभी तक उसने कुछ कहां पर अध्ययन नहीं किया हुआ है, ऐसा श्लोक जब वो सुना रहा था सारे भक्तों के मन जो है वो आश्चर्यचकित हो गए। चैतन्य प्रभु रे एक कृपार महिमा ब्रह्मादि देव यार नहीं पाय सीमा। इस प्रकार से जो है वो महाप्रभु की कृपा जिसके ऊपर है उसकी महिमा का क्या गान करे, ब्रह्मा जी भी ऐसी कृपा को जो है वो नहीं समझ सकते। और यही पुरीदास आगे चल के जो है वो कवि कर्णपुर बनते हैं, महाप्रभु की इतनी कृपा जो है वो उनके ऊपर होती है। तो चार महीने के पश्चात सारे गौड़िया भक्त अभी पुनः अपने प्रांत की तरफ प्रस्थान कर लेते हैं। जैसे हमने बताया था कि महाप्रभु तीन अवस्थाओं में हमेशा रहा करते थे, पूर्ण बाह्य अवस्था, अर्ध बाह्य अवस्था और पूर्ण निमग्न कृष्ण प्रेम में निमग्न अवस्था। तो जब चार महीने के लिए बंगाल के भक्त थे, महाप्रभु अपनी बाह्य अवस्था में रहा करते थे और जब ये पुनः लौट जाते थे तो महाप्रभु अपनी अंतरंग अवस्था, पुनः निमग्न अवस्था को जो है वो प्राप्त कर लेते थे। एक दिन की बात है, महाप्रभु जगन्नाथ जी के दर्शन करने के लिए जब जाते हैं, वहीं पर द्वारपाल महाप्रभु को प्रणाम करते हैं और महाप्रभु उसी द्वारपाल का हाथ पकड़ के पूछते हैं, कृष्ण कहाँ है, कृष्ण कहाँ है। तो द्वारपाल पकड़ के उन्हें जो है वो लेके जाते हैं और दिखाते हैं कि देखिए जगन्नाथ, यही कृष्ण है। जैसे महाप्रभु जगन्नाथ जी का दर्शन कर लेते हैं, महाप्रभु जो है वो केवल, उन्हें लगता है कि मैं अभी नंदनंदन मुरली बजाने वाले श्री कृष्ण को देख रहा हूं। और उसी समय जो है वो वहां पर गोपाल वल्लभ नाम का भोग वहां पर लगाया हुआ होता है जगन्नाथ जी को, शंख घंटे बजाकर जो है वो आरती होती है और आरती समाप्त होने के पश्चात पुजारी गण कुछ माला चैतन्य महाप्रभु को पहनाते हैं और भगवान का शेष प्रसाद जो है वो उन्हें देते हैं। तो उस प्रसाद की क्या महिमा, उसका आस्वाद तो दूर छोड़ो, थोड़ा सा कर्ण ले लेते हैं, गान करते हैं, महाप्रभु के आंखों से अश्रु प्रवाहित हो रहे हैं और महाप्रभु बोल रहे हैं कि अमृत के भी स्वाद को इसने जो है वो लांग दिया है, ऐसा यह स्वादिष्ट प्रसाद। एई द्रव्य एत स्वाद कहां होई ते आईल, कृष्णेर अधरामृत इते संचारिला। ये महाप्रसाद में इतना स्वाद कहां से आया है, भक्तों से पूछते हैं और कहते हैं कि कृष्णेर अधरामृत इते संचारिला। अधर यानी ओठ, अमृत, तो कृष्ण का अधरामृत मतलब कृष्ण के ओठ से इस प्रसाद का स्पर्श हुआ है, इसलिए ये जो है वो इतना स्वाद इसमें आया हुआ है। और इस प्रकार से प्रेमवश महाप्रभु उसका अनुभव कर रहे हैं, लेकिन उन्मत्त होने ही वाले हैं, उन्मत्त दशा में प्रवेश करने वाले हैं, लेकिन देखते हैं ये सारे लोग यहाँ पर जो है वो बाहर के जगन्नाथ जी के पुजारी आदि वहां पर है, इसलिए अपने अपने भाव को वो नियंत्रण करते हैं और सुकृति लभ्य फैला लव, सुकृति लभ्य फैला लव, सुकृति लभ्य फैला लव ऐसे चिल्लाते हैं। किसी को कुछ समझ में नहीं आता है, जो जगन्नाथ जी के सेवक होते हैं वो पूछते हैं महाप्रभु के इसका अर्थ क्या है, इसका अर्थ क्या है। प्रभु कहे ये दिला कृष्ण अधरामृत, ब्रह्मादि दुर्लभ ए निंदा ये अमृत। कहते हैं कि कृष्ण का ये अधरामृत है, ये महाप्रसाद, ये ब्रह्मा जी को भी जो है वो दुर्लभ है, निंदा ये अमृत, अमृत की भी निंदा इसके सामने होती है, अमृत के भी स्वाद को इसने लांग दिया है, ऐसा ये भगवान का महाप्रसाद है। कृष्ण रे भुक्त शेष तार फेला नाम, तार एकलव ये पाय से ही भाग्यवान। जो है कृष्ण का जो भुक्त अवशेष, कृष्ण के द्वारा आस्वादन करने के पश्चात जो शेष जो है प्रसाद है, इसे कहते हैं फेला, इसका नाम है फेला। तार एकलव ये पाय से ही भाग्यवान, जो भाग्यवान है उसे ही जो है वो इसका कण मात्र प्राप्त हो सकता है इस प्रसाद का। सामान्य भाग्यवान जीव को भी ये प्रसाद नहीं मिल सकता, लेकिन कृष्ण की पूरी कृपा जिस व्यक्ति के ऊपर हो गई है उसी व्यक्ति को ये भगवान का जो है वो महाप्रसाद मिल सकता है, ऐसा कह के महाप्रभु उन सेवकों को विदा देते हैं और जो है वो अपने घर पर वापस लौटते हैं। दोपहर का भोजन महाप्रभु करते हैं, लेकिन उनके मन में केवल कृष्ण का अधरामृत उसके ही जो है वो स्मरण चल रहा है। संध्या के समय जब पुनः गोविंद के द्वारा जगन्नाथ जी का महाप्रसाद लाया गया, महाप्रभु के साथ सार्वभौम भट्टाचार्य, स्वरूप दामोदर, रामानंद राय सारे भक्तों को महाप्रभु वो प्रसाद बांटते हैं और कहते हैं कि देखो इसका इसका आस्वाद तो दूर रहे, इसका गंध जो है वो मदमत्त करने वाला है, कैसा है प्रसाद। और महाप्रभु प्रसाद का गुणगान कर रहे हैं और कृष्ण का अधरामृत का ही जो है उनका स्मरण चल रहा है। महाप्रभु कहते हैं लवंग, मिर्ची, कर्पूर, इलायची, ये सब तो हमने पहले भी आस्वादन किया हुआ है, ये सब तो जो है वो केवल भौतिक पदार्थ है, लेकिन इनमें अभी इतना स्वाद, इतनी मधुरता, इतना गंध जो कैसे आया हुआ है, क्योंकि ये अभी असामान्य वस्तु है, क्योंकि ये अभी कृष्ण के अधरामृत से सिंचित महाप्रसाद कहलाया गया है। ताते एई द्रव्य कृष्ण अधर स्पर्श हैला, अधरेर गुण सब इहाते संचारिला। इस द्रव्य में, इस द्रव्य का अभी कृष्ण के अधर के साथ स्पर्श हुआ है और कृष्ण के अधरामृत से संचारित है, इसलिए यह अभी अद्भुत वस्तु हो गई है। अनेक सुकृते इहा हैयाचे संप्राप्ति, सबे एई आस्वाद कर करी महा भक्ति। बहुत जन्म की सुकृति करने के पश्चात कोई व्यक्ति का सौभाग्य उदित हो जाता है, तब उसे इस महाप्रसाद का आस्वादन करने का जो है वो सौभाग्य प्राप्त हो सकता है। इसलिए बहुत ही अधिक अच्छे मन से जो है वो इसका आप आस्वादन करो। सारे भक्त जो है वो हरि ध्वनि करते हुए इसका आस्वादन करते हैं। हमें भी जब हम भगवान का महाप्रसाद लेते हैं तब ये कृष्ण का अधरामृत है, ऐसा सोच के जो है वो महाप्रसाद का आस्वादन हमने करना चाहिए। इस प्रकार से अभी महाप्रभु आस्वादन कर रहे हैं। रामानंद राय से कहते हैं कुछ हो जाए, कुछ सुनाओ इस मौके पर। और राय रामानंद हमें पता है कि किस प्रकार से महाप्रभु के मनोभाव को जान के जो है वो श्लोक सुनाया करते थे। अभी गोपी गीत का एक श्लोक जो है वो रामानंद राय सुनाते हैं, जिसमें कृष्ण के अधरामृत का ही वर्णन पाया जाता है। सुरत वर्धनम शोकनाशनम स्वरित वेणुना सुष्टु चुंबितम इतर राग विस्मरणम नृणाम वितर वीरनस्ते अधरामृतम। तो गोपी गीत का श्लोक सुनाते हैं, सुरत वर्धनम हमारी कामनाओं को बढ़ाता है, शोक नाशनम सारे शोक को कम कर देता है, स्वरित वेणुना ये जो स्वर है वेणु से सुष्टु चुंबितम जो वेणु कृष्ण के ओठों से चुंबित है, इतर राग विस्मारणम नृणाम और इससे जो राग निकलता है वो सारे हमारी आसक्तियों को दूर कर देता है। वितर वीर नस्ते अधरामृतम, हे कृष्ण आपके अधरामृत को जो है वो हमें पान कराओ पान कराओ। इस प्रकार से जो है वो गोपियों का गीत सुनाते हैं। श्लोक सुनी महाप्रभु महातुष्ट हैला, राधार उत्कंठा श्लोक पड़ी तेला गिला। इस प्रकार से जब राय रामानंद के द्वारा ये श्लोक महाप्रभु ने सुना तो बहुत ही अधिक स्वयं जो है वो अर्थ उद्घाटित करते हैं और बहुत सुंदर वो कृष्ण के अधरामृत के महिमा का गान करने वाले श्लोकों को वो सुनाते हैं। अचूक नारी रकाय कहिते वासिये लाज, तुमर अधर बड़ दुष्टराय, पुरुषे करे आकर्षण अपना पी आईते मन अन्य रस सब पास राय। अचूक नारी रकाय कहिते वासिये लाज, तुम्हारा अधर बड़ा दुष्ट राय, हे कृष्ण आपका जो अधर है आपके जो ओंठ है वो बड़े दुष्ट है, ये जो है वो बड़े ही निर्लज्ज है। अचूक नारी रकाय, हम जैसे नारियों को आकर्षित कर लेते हैं और सारी लज्जा को छोड़ने के लिए बाध्य कर देते हैं। पुरुषे करे आकर्षण, ये पुरुषों को भी आकर्षित करा देते हैं। जो जैसे ये जो वंशी है ये पुरुष जाति की है, बांबू इनकी जड़ है, बांबू से बनती है, इसलिए पुरुष जाति की है। अपने पियाते मन, इसे आप पान कराते हैं। अन्य रस सब पास राय, बाकी सारे रसों को आस्वादन को भुला देते हैं, ऐसे ये जो आपके अधरों का रस है। सचेतन रहो दूरे अचेतन सचेतन करे, तुम्हार अधर बड़ बाजीगर, तुम्हार वेणु शुष्क इंधन, तार जन्माय इंद्रिय मन, तारे अपना पियाय निरंतर। सचेतन रहो दूरे, अरे चेतन लोगों को तो छोड़ दो, अचेतन सचेतन करे, अचेतन वस्तुओं को भी सचेतन कर देने वाली तुम्हार अधर बड़ वाजीगर, आप जो है वो आपके जो अधरामृत है वो तो जादूगर के समान है, सचेतन को आकर्षित कर लेता है लेकिन अचेतन वस्तुओं को भी सचेतना प्रदान कर देता है। तुम्हारे वेणु शुष्क ईंधन, ये जो है वो केवल सूखे हुए काष्ट की बनी हुई आपकी वेणु, तार जन्माय इंद्रिय मन, उसके अंदर भी इंद्रिय और मन को जन्म देता है, और तारे अपना पियाय निरंतर, और उसे भी निरंतर आप पिलाते रहते हैं अपने अधरों का पान, अधरों का अमृत जो है वो ये वेणु स्वयं उसका आस्वादन करती है और ये हमें चिल्ला चिल्ला के बोलती है, आप भी आओ आस्वादन करो, आप भी आओ आस्वादन करो, इस प्रकार से आपकी अधरों की एडवर्टाइज करती है ये आपकी वेणु। अधर अमृत निज स्वरे संचारिया से बले आकर्षय त्रिजगत जन, अमरा धर्म भय करी रही यदि धैर्य धरी सबे अमाय करे विडंबन। अधरामृत, एक तो पहले आपका ओटों का अमृत वो भी इतना महान है, और निज स्वरे उसके साथ साथ ये वंशी से निकलने वाली ध्वनि, ये दोनों क्या करते हैं, संचारिया से ही बले, ये दोनों बलपूर्वक जो है वो संचार करते हैं, और आकर्षय त्रिजगत मन, तीनों जगत के लोगों के मन को अपनी ओर आकर्षित कर लेती है। अमरा धर्म भय करी रही यदि धैर्य धरी, धर्म के भय के कारण यदि हम लोग हमारे धर्म रूपी धैर्य को यदि धारण करके खड़े रहते हैं, तबे आमाय करे विडंबन, तब ये वंशी की ध्वनि हमारी आलोचना करती है कि क्या तुम्हारे जीवन का लाभ है कि आप इसका पान नहीं कर पा रही है। निवी सखाय गुरु आगे लज्जा धर्म कराय त्यागे, केशे धरी येन लया याय, आनी कराय तो मारदासी सुनी लोक करे हासी ए मत नारी रेना चाय। कैसी ये ध्वनि है वंशी की ध्वनि, क्या करती है, निवी सिखाए गुरु आगे लज्जा धर्म कराए त्यागे, हमारे कमर पट्टों को ढीला कर देती है और बड़े बुजुर्ग लोगों के सामने हमारे लज्जा को त्याग करने के लिए बाध्य कर देती है, और मानो केश को पकड़ के जो है वो हमें आपके सामने गिरा देती है, पटक देती है, आनी कराए तुम्हार दासी, आपकी दासी बना देती है, और जब लोग इसे सुनते है तो लोग हमारा हंसी मजाक उड़ाते है, ए मत नारी रेना चाय, इस प्रकार से हमें नाचने के लिए बाध्य कर देती है यह आपकी ध्वनि। अधरे रे रीति आर सुन कुनीति से अधर सने यार मेला, से भक्ष भोज पान हय अमृत समान नाम तार हय कृष्ण फेला। यह अधर की ऐसी ही रीत है, कृष्ण के अधर के अमृत की यही रीत है। आर सुन कुनीति, उनकी और दूसरी दूसरी जो है वो अन्यायों को आप सुनो, क्या है, से अधर सने यार मेला, ये अधर का अमृत और वंशी की ध्वनि ये मिलकर जो है वो कई सारे अन्याय इस संसार के ऊपर करते हैं। से ही भक्ष भोज जपान हय अमृत समान, कृष्ण जो भी खाते हैं, जो भी पीते हैं, और जो बाद में उच्छिष्ट होता है वो सब जो है वो अमृत के समान ही हो जाता है। नाम तार हय कृष्ण फेला, और उसका नाम क्या हो जाता है, कृष्ण फेला, कृष्ण प्रसाद उसका जो है वो नाम हो जाता है। से फेला र एकलव ना पाय देवता सब एदंभे के बापति याय, बहु जन्म पुण्य करे तबे सुकृति नाम धरे से सुकृते तार लव पाय। से फेलार एकलव ना पाए देवता सब, सारे देवता भी जो है वो इस भगवान का जो उच्चिष्ट महाप्रसाद है उसके एक लव मात्र, उसके कण मात्र को भी नहीं पा सकते हैं। ए दंबे के बाप पतियाय की कहते हैं कि उस शेष प्रसाद का गर्व तो देखो जो देवताओं को भी अलभ्य है। बहु जन्म पुण्य करे सुकृति तब नाम धरे, बहुत जन्म जन्मांतर किसी व्यक्ति ने गवाया है और बहुत सारे पुण्य और सुकृति जब उसने अर्जित की है तब जाके से सुकृते तार लव पाए, उस सुकृति के बल पर उस भगवान के उच्चिष्ट प्रसाद का एक लव किसी व्यक्ति को प्राप्त हो सकता है। तो हमारा सौभाग्य देखिए कि कृष्ण का अधरामृत का जो है वो महाप्रसाद के रूप में हमें पान करने को मिलता है, इसका अर्थ है कि कई जन्मों जन्मों की सुकृति जो है वो हमें मिली हुई है, और देवताओं को भी अलभ्य है। जैसे हम कथा सुन रखे हैं कि किस प्रकार से शिवजी को एक बार जब महाप्रसाद मिल जाता है तो वो नारद मुनि के द्वारा तो वो तांडव नृत्य कर लेते हैं, फिर पार्वती को जो मिलता है तो पार्वती बेहोश हो जाती है। तो इस प्रकार से ये भगवान का महाप्रसाद देवताओं को भी अलभ्य है, कई जन्म जन्मांतर तक पुण्य कोई व्यक्ति करता है तब उसे सुकृति कहा जाता है, और उसके बल पर जाके उसका एक लव, उसका एक कण मात्र जो है वो महाप्रसाद का आस्वादन किसी व्यक्ति को मिल सकता है। એ સબ તોમાર કુટી નાટી છાડ એ પરિપાટી વેણુ દ્વારે કાહે હર પ્રાણ આપનાર હાસી લાગી નહ નારીર વદ ભાગી દેહ નિજ અધર અમૃત દાન. એટલે હે કૃષ્ણ આપની જીતની ચાલે ઇતની દક્ષતા સે ચલ રખી હે ઉન સબકો ત્યાગ દો. તુમાર કુટી નાટી છાડે ઈ પરિપાટી ઇન 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 દક્ષતા પૂર્વક ઇને જો આપ ત્યાગ કર દો. વેણુ દ્વારે કહા હરે પ્રાણ, વેણુ કે દ્વારે આપ હમારે પ્રાણ કો હી હરણ કર રહે હો. અપનાર હસી લાગી અરે લોગ લોગ હસેંગે ઓર અપની હસી ઓર ઉપહાસ કે સાથ આપ નહ નારીર વદ ભાગી. એ જો નારીઓ કા વદ હો રહા હે ઉસમે જો આપકા પરિહાસ હે ઓર આપકી વેણુ કી ધ્વનિ હે ઇન લોગો કો જો હે વો પકડા જાયેગા. નારીઓ કે વધ કે લિયે યહી જો હે વો ભાગીદાર હે. ઇસલિયે દેહ નિજ અધરામૃત દાન, આપ જો હે વો હમે અપને ઇસ અધરામૃત કા જો હે વો પાન કરા દીજીએ. ઇસ પ્રકાર સે મહાપ્રભુ ઉસકા આસ્વાદન કર રહે હે. પરમ દુર્લભ એ કૃષ્ણ અધરામૃત તહા યહી પાય તાર સફલ જીવિત. ઇસ પ્રકાર સે કૃષ્ણ કે અધરામૃત કા જો પાન હે કોઈ વ્યક્તિ જો ઉસે પ્રાપ્ત કર લેતા હે ઉસકા જીવન જો હે વો સફલ સમજના ચાહીએ. કહ રામ રાય કિછુ સુનીતે હોય મન, ભાવ જાની પડે રાય ગોપીર વચન. ફિર મહાપ્રભુ ઓર રામાનંદ રાય સે કહેતે કે કુછ સુનાઓ, કુછ સુનને કી ઈચ્છા મેં રખ રહા હું. તો ફિર રામાનંદ રાય જો શ્રીમદ ભાગવત કા ઓર એક દશમ સ્કંદ કે 21 અધ્યાય ગોપીઓ કે બીચ મેં ચર્ચા હો રહી હે ઇસકા એક શ્લોક સુનાતે હે. ગોપ્યઃ કિમ આચરત અયમ કુશલમ સ્મ વેણુર. વો શ્લોક ઉસકી જો હે વો ચર્ચા કરના પ્રારંભ કરતે હે ઓર મહાપ્રભુ અભી સ્વયં ઉસ શ્લોક કા અર્થ સુનાતે હે. દેખીએ ચૈતન્ય ચરિતામૃત મેં જગહ જગહ પર મહાપ્રભુ જો હે વો શ્રીમદ ભાગવત કા જો હે વો પાન કરતે હે. તો જો વ્યક્તિ ચૈતન્ય ચરિતામૃત પડેગા વો વ્યક્તિ નિશ્ચિત રૂપ સે શ્રીમદ ભાગવત કો ભી જો હે વો પડતા હી હે. તો વો શ્લોક સુનાયા ગયા રાય રામાનંદ દ્વારા મહાપ્રભુ અભી ઉસ શ્લોક કા અર્થ કરતે હવે કુછ શ્લોક આગે કહેતે હે. ગોપીગણ કહ સબ કરી આ વિચારે. ગોપિયા એક દૂસરે કે સાથ ચર્ચા કર રહી હે ઓર કહેતી હે કે હે ગોપીઓ જરા વિચાર કરો. કો ન તીર્થ કો ન તપ કો ન સિદ્ધ મંત્ર જપ એ વેણુ કૈલ જન્માંતરે. કોણ સે તીર્થ સ્થાન મેં ગઈ થી, ક્યા તપ ક્યા થા, કોણ સે સિદ્ધ મંત્ર કા જપ ક્યા હોગા ઇસ વેણુ ને, ઇસ વેણુ કે વેણુ કિતને જન્મ જન્માંતર ઇસ વેણુ ને યે તપ ક્યા હોગા ઉસકી સફલતા તો દેખો ક્યા કર રહી હે. હે ન કૃષ્ણા ધર સુધા યે કૈલ અમૃત મુધા યાર આશાય ગોપી ધરે પ્રાણ. એ વેણુ અયોગ્ય અતિ સ્થાવર પુરુષ જાતિ સે સુધા સદા કરે પાન. અરે દેખો દેખો યે વેણુ અયોગ્ય, ये बिल्कुल अयोग्य है कृष्ण का अधरामृत का पान करने के लिए. क्यों? क्योंकि ये तो स्थावर पुरुष जाति, ये तो स्थावर मतलब एक जगह रहने वाले और बांबू वृक्ष की ये अंश है, मतलब ये पुरुष जाति की है. लेकिन क्या करती है? सही सुधा सदा करे पान. ये कृष्ण के अमृत अधरामृत का हमेशा पान करती रहती है पुरुष होने के बावजूद. હે ન કૃષ્ણ અધર સુધા યે કૈલ અમૃત મુધા. કૃષ્ણ કે અધર સુધા કી ક્યા મહિમા ગાઈ જાય, એ અમૃત કો ભી જો હે વો લાંગ દી હે. યાર આશાય ગોપી ધરે પ્રાણ, ઓર હમ ગોપિયા ઉન અધરો કે અમૃત કભી હમે મિલેગા ઇસ આશા કે ઉપર હમ હમારે પ્રાણો કો બનાઈ રખી હે. યાર ધન ના કો હે તારે પાન કરે બલાત્કારે પીતે તારે ડાકી આજાનાય. તાર તપસ્યાર ફલ દેખ ઇહાર ભાગ્ય બલ ઇહાર ઉચ્ચિષ્ટ મહાજને ખાય. યે તો હમારા ધન હે, કૃષ્ણ કા અધરામૃત યે તો હમારા ધન હે. ના કહે તારે પાન કરે બલાત્કારે, હમે નહીં દિયા જા રહા હે લેકિન બલપૂર્વક જો હે યે વેણુ હી આસ્વાદન કર રહી હે. પીતે તારે ડાકિયા જાના હે, ઓર યે કેવલ આસ્વાદન હી નહીં કર રહી હે, યે ઇસકા એડવર્ટાઇઝ ભી કર રહી હે. દૂસરો કો બોલ રહી હે કે દેખો મેં પી રહી હું, મેં પી રહી હું, તુમે નહીં મિલ રહા હે, તુમે નહીં મિલ રહા હે. ઇસ પ્રકાર સે હમારે અંદર ઈર્ષા ઉત્પન્ન કર રહી હે. તારો તપસ્યાર ફલ દેખ ઇહાર ભાગ્ય બલ. ક્યા તપસ્યા કી હોગી ઇસ વેણુ ને, ક્યા ઉસકે ભાગ્ય કી સીમા હે, कोई जान ही नहीं सकता। इहार उच्चिष्ट महाजने खाए, कि बड़े बड़े महान भक्तों को कृष्ण का प्रसाद मिलता है, वो भी इस वेणु का झूठा ही होता है। तो ये वेणु का जो है वो महाप्रसाद, उसका वर्णन है। अभी वेणु से उनका ध्यान हट रहा है और उस वृक्ष की तरफ जा रहा है जिनके वंश में ये वेणु आती है। निज अंकुरे पुलकित पुष्पे हास्य विकसित मधु मिशे वहे अश्रुधार वेणुरे मानी निज जाति आर्यर ये न पुत्र नाती वैष्णव हैले आनंद विकार। जिस प्रकार से किसी कुल में वैष्णव उत्पन्न हो जाता है तो सारे कुल वाले लोग जो है वो नाचते हैं, गाते हैं वेणुरे मानी निज जाति। उसी प्रकार से ये वृक्ष नदियों के तट पे वो मानते हैं कि ये वेणु हमारी हमारी वंशज है और ऐसा कह के वो नाच रहे हैं, गा रहे हैं, प्रसन्न हो रहे हैं क्योंकि वेणु कृष्ण के अधरामृत का आस्वादन कर रही है। निज अंकुर पुलकित, उनके जो अंकुर है वो अंग पुलकित हो रहे हैं। पुष्पे हास्य विकसित, वो हंस रहे हैं और उनकी हंसी मानो फूलों के रूप में विकसित हो रही है। मधु मिशे वहे अश्रुधार, और जो वृक्षों से मधु आ रही है, मधु टपक रही है, वो माने उनके अश्रु के समान है। कितने वो आनंदित हो रहे हैं जब वो देख रहे हैं कि उनके ही वंशज, ये वंशी जो है वो कृष्ण के अधरमृत का पान कर रही है। वेणुर तप जानी यबे सेई तप करी तबे ए अयोग्य अमरा योग्या नारी या ना पाईया दुखे मरी अयोग्य पिये सहिते नारी तहा लागी तपस्या विचारी। वेणुर तप जानी यबे, ये वेणु ये अयोग्य है कृष्ण के अधरामृत का पान करने के लिए। वेणु बिल्कुल अयोग्य है और हम हमारी जैसी नारियां गोपियां ये योग्य है। वेणुर तप जानी अबे सही तप करी तबे, ये वेणु ने क्या तपस्या की है इसको हमें समझना चाहिए और हमें भी उस प्रकार के तप में लगना चाहिए। याना पाइया दुखे मरी, उस अधरामृत का पान हमें तो नहीं हो रहा है इसलिए हम मर रहे हैं, और उससे बड़ा दुख क्या है कि जो अयोग्य वंशी है उसे कृष्ण के अधरामृत का पान हो रहा है, इससे तो और हमारा दुख जो है वो अयोग्य सही ते ना पारी, उसे हम लोग जो है वो सहन नहीं कर रहे हैं। ऐसा जो है तहां लागी तपस्या विचारी, इसलिए गोपियां एकत्रित आके चर्चा कर रही है कि ये वेणु ने जो तपस्या की है उस तपस्या का विचार हमें भी करना चाहिए और हमने भी वो तपस्या में अपने आप को लगा देना चाहिए। एते कप्रलाप करी प्रेमा वेशे गौर हरी संगे लैया स्वरूप राम राय। इस प्रकार से महाप्रभु प्रलाप करते थे प्रेमावेश में, गौर हरी राय रामानंद और स्वरूप दामोदर इनको लेके उनका जो है वो प्रेम का विलाप हुआ करता था। कबू नाचे कबू गाय भावा वेशे मूर्छा याय ए रूपे रात्रि दिन याय। इस प्रकार से कभी नाचते हुए, कभी गाते हुए, कभी मूर्छित होते थे महाप्रभु। इस प्रकार से जो है वो कृष्ण प्रेम का आस्वादन दिन और रात जो है वो इसी प्रकार से किया करते थे। स्वरूप रूप सनातन रघुनाथेर श्री चरण शिरे धरी करी यार आश। स्वरूप दामोदर, रूप गोस्वामी, सनातन गोस्वामी, रघुनाथ दास गोस्वामी, इनके चरणों की वंदना मैं करता हूँ और जिनकी चरणों की धूल मैं अपने सर पर रखता हूँ। चैतन्य चरिता अमृत अमृत हैते परामृत गाय दीन हीन कृष्ण दास। तो इस प्रकार से चैतन्य चरितामृत क्या है, अमृत हैते परामृत। चैतन्य चरितामृत जो है वो अमृत से भी पर अमृत, पर मतलब ऊपर, अमृत से भी ऊपर ऐसा चैतन्य चरितामृत है जिसको मैं आप सब भक्तों को सुना रहा हूं। और ऐसे बड़े भक्त स्वरूप रूप सनातन रघुनाथ इनके चरणों में मैं अपना सिर रखकर चैतन्य चरितामृत का गान कर रहा हूं, ऐसे जो है वो कविराज गोस्वामी कह के यहाँ पे विराम देते हैं। तो इसी प्रकार से जब रात और दिन चैतन्य महाप्रभु जो है वो बिताया करते थे, ये लीलाएं जो है वो महाप्रभु ने जो आस्वादन किया ये ब्रह्मा जी को भी अगोचर है, ब्रह्मा जी को भी नहीं सुनने को मिलता, जो कृष्णदास कविराज गोस्वामी और श्रील प्रभुपाद जी के कृपा के कारण जो है वो हमें थोड़ा बहुत उनका आस्वादन करने का मौका जो है वो इस अंत लीला में जो है वो मिला हुआ है। तो इस प्रकार से जो महाप्रभु और अलग 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 जो है वो लीलाएं किया करते थे। और अभी और एक इस प्रकार का वर्णन आने वाला है, और बिल्व मंगल ठाकुर और इनके द्वारा रचित कई सारे जो श्लोक है उनका आस्वादन महाप्रभु राय रामानंद और स्वरूप दामोदर इनके साथ कैसे करते हैं, इसे यदि आपको सुनना है तो आप बने रहिए। केवल आखिरी चार दिन हमारे शेष है, तो इसमें हमारी अंत लीला जो है वो इसका अंत होने वाला है। लेकिन जैसे जैसे अंत हो रहा है उतनी ये लीलाएं और मधुर होती जाएगी, और उसका जो है वो हमें आस्वादन करने को मिल रहा है। तो मिलेंगे हम शाम को कल ठीक 5:30 बजे। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा। ग्रंथराज श्री चैतन्य चरितामृत की जय। कृष्णदास कविराज गोस्वामी पाद की जय। श्रील प्रभुपाद की जय।